ओम शांति। इस अव्यक्त मास में आप सभी ने बहुत अच्छा वायुमंडल बनाया है, विशेष करके ये नुमा शाम को योग जब चलता है सभी स्थानों पर करते हैं, लेकिन आज जब मैं यहाँ प्रवेश हुआ तो आते ही जैसे कोई एक सेकेंड में विमान उड़ जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा सुंदर वायुमंडल सबके एक संकल्प से बना हुआ है। जिनका योग नहीं लगता है अगर वो इस संगठन में आके बैठ जाएं तो सहज योग लग जाएगा, ऐसा अनुभव है ना सबका, क्योंकि इतनी सब पवित्र और योगी आत्माएं एक बाबा के प्यार में खो करके समा करके बैठती हैं, तो नेचुरल वायुमंडल इतना शक्तिशाली होता है जो दूर दूर तक इसके प्रकंपन फैलते हैं। पांडव भवन में भी 3 दिन से मैं शाम के समय योग में जाता था, वहां भी बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन इस बार हमने देखा कि आप सब शांति वनवासी बहुत लगन के साथ तपस्या कर रहे हैं। जनवरी मास में सभी तरफ बहुत अच्छी लहर है योग भट्टियों की, और बाबा भी हम सबको यही विधि बताते हैं कि बच्चे आपका बुद्धि रूपी विमान ऐसा शक्तिशाली हो जो एक सेकेंड में आपको मूल वतन सूक्ष्म वतन की सैर कराए, ऐसा बनाया है सभी ने अपने बुद्धि रूपी विमान को। जैसे उस विमान को उड़ाने के लिए बहुत अच्छे पेट्रोल की जरूरत होती है, चेकिंग बहुत अच्छी करते हैं, पेट्रोल फुल करते हैं, सामग्री रखते हैं जो जरूरी है, और फिर एक सेकेंड में उड़ा देते हैं। हम सबको भी बाबा कहते हैं बच्चे जो सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जो शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं, वो जब एकाग्र होकर के योग में बैठते हैं तो एक सेकेंड में उड़ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि रूपी विमान में ज्ञान का पेट्रोल फुल है, रूहानी नशा भी है, खुशी भी है, उमंग भी है, और कोई संकल्प बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। तो जब भी संगठन में हम बैठते हैं तो सबका एक संकल्प अगर हो जाए तो बहुत शक्तिशाली वायुमंडल बन जाता है, और ड्रिल तो बाबा ने हम सबको यही सिखाई है, पहले साकारी याद में एकदम नशा चढ़ता है, वाह भाग्य जो भगवान हमको कैसे पालना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आज की मुरली को जिसने फिर से रिवाइज किया वहां तो उठाओ किया है, अच्छा देखो बाबा एक ही मुरली के अंदर एक शब्द के अंदर पूरा ज्ञान भर देता, पूरा ही मैं कहता हूं सारी पढ़ाई एक शब्द के अंदर थी, सारी पढ़ाई एक रिकॉर्ड शब्द के अंदर, रिकॉर्ड वो भी रिगार्ड देने का, एक ही शब्द में बाबा ने पूरा ही ज्ञान को कैसे समेटा। तो जब मुरली पढ़ते हैं चिंतन करते हैं तो ऐसी पढ़ाई किसी को मिलती होगी दुनिया के अंदर, विचार करो कितना प्यार से बाबा हम सबको बच्चे बच्चे कह करके और इतनी ऊंची शिक्षाएं इतनी ऊंची पालना दे रहा है। चारों रूप से रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड सबने चेक किया। कई लोग कहते हैं हम चार्ट तो रखते हैं लेकिन एक जैसा चार्ट होने के कारण कभी कभी थकावट बोर हो जाते छूट जाता है, वही चार्ट क्या लिखें। लेकिन बाबा की मुरली के अंदर अगर रोज देखो चार्ट की कितनी सारी बातें आज के मुरली में थी। सिर्फ चेकिंग ही करनी है चार्ट में और क्या है, सूक्ष्म चेकिंग करो कि मेरा बाबा में कितना निश्चय है। और उस बाबा में निश्चय माना उसके हर पार्ट में जो पार्ट बजा रहा है जैसे भी बजा रहा है उसमें जरा भी कोई क्वेश्चन नहीं। समझने के हिसाब से बाबा ने कहा पूछ लेना, समझ करके चलना वो अच्छा है लेकिन संशय के रूप में कोई भी प्रश्न न उठे ऐसा क्यों ऐसा कैसे। और बाबा के रूप से बाप का रिगार्ड ही फॉलो फादर करना, जो कुछ बाबा ने किया है प्रैक्टिकल में अव्यक्त रूप में बाबा ने सब कुछ सिखा दिया सुना दिया। तो बाबा ने साकार में क्या क्या किया है अव्यक्त बाबा ने सब बातें रिवाइज की हैं। तो हम सब बाबा के कदम पर कदम चल रख करके चलते हैं तो यही है बाबा का रिगार्ड। तो सभी ने चेक किया कि हम कितना बाबा को रिगार्ड दे रहे हैं। और फिर शिक्षक के रूप में बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि रेगुलर हैं पंचुअल हैं, भगवान पढ़ा रहा है तो उसका भी पूरा रिगार्ड, जरा भी पढ़ाई में अलवेलापन न हो। कई बार हम समझ लेते हैं मुरली तो आजकल हमारे हाथ में होती है, हर एक के हाथ में साइंस ने मुरली तो पहुंचा दी पहले से, मुरली के लिए अभी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। मैंने देखा है जहां भी कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी में टेप चला देते हैं मोबाइल से, सब लोग सुन लेते हैं मुरली, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आवाज में सुनने को मिल जाती है। लेकिन एक पढ़ाई का इतना कदर हो कि बाबा की मुरली हम संगठन में जाकर के सुने पढ़ें और उसका लाभ लें, ये भी एक बाबा का रिगार्ड है, टीचर का रिगार्ड है। और सतगुरु के रूप में इतनी श्रेष्ठ मत दी है गति सदगति की, उस मत के अनुसार सब बातों से बुद्धि उपराम हो जाए जाना है वापस, ये भी एक रिगार्ड है। अगर कहीं बुद्धि लटकी है फंसी हुई है माना सतगुरु की आज्ञाओं पर हम नहीं चल रहे हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, ये सतगुरु की आज्ञा है। फिर बाबा हम बच्चों को और संबंधों में भी रिगार्ड की बात सुना रहे थे, साजन के रूप से वफादारी, एक तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुमसे ही बात करूं, सखा के रूप से बंधु के रूप से हर प्रकार से बाबा ने हम सबको मन मत पर मत सब बातों से मुक्त करने के लिए एक रिगार्ड शब्द में कितनी बातें सुना दी। नॉलेज का रिगार्ड, बाबा की मुरलियों को सुनते हैं, कई बाबा के महावाक्यों को सुनते कई के प्रश्न उठ जाते हैं कि बाबा कहता है तो असंभव लगता है कैसे होगा, लेकिन सत्य वचन महाराज भगवान के महावाक्य हैं, उसमें कुछ न कुछ रहस्य भरे हुए हैं। अगर उन महावाक्यों में जरा भी कोई संशय उठता है माना हमने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं, ज्ञान दाता को पहचाना नहीं। ज्ञान दाता ने कितना स्पष्ट हम बच्चों के कल्याण के लिए हर बात कही है, भले लोगों के लिए असंभव लगे लेकिन हमारे अंदर वो प्रश्न नहीं उठता ऐसा बाबा ने तो कहा था हुआ तो नहीं। कई बातें ऐसी मुरली के अंदर साकार में कही थी, उस समय के हिसाब से वो नहीं हुई लेकिन अभी हम देख रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल में हो रही हैं। और उसी आधार से हम सबका इतना कल्याण हुआ। अगर वो बातें हम लोगों ने निश्चय के आधार से नहीं उठाई होती तो हमारा जीवन कहाँ बनता। जैसे बाबा ने जब हम ज्ञान में आए, मधुबन में आए 71 में, तो उस समय मुरली के अंदर आता था बस बच्चे 5 साल हैं, 76 में विनाश हो जाएगा। और इस बात के कारण इतना निश्चय था हमारे लौकिक परिवार में भी और मुझे भी, ये 5 साल ही है तो हम क्यों न सेवा कर लें, फिर किसने देखा। और उसी एक शब्द के बाबा के हम लोगों का भला कर दिया जो हम समर्पित हो गए। परिवार को भी ये निश्चय हुआ भी पढ़ के क्या करेगा, जब भाई ये 4-5 साल छोड़ो, लग जाओ सेवा में, आप भी लग जाओ हम भी लग जाएं। तो बाबा के एक एक शब्द में कितने बच्चों का कल्याण समाया हुआ है। और हम सब जानते हैं कि बाबा जो कुछ कह रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ कल्याण का रहस्य भरा हुआ है। इसलिए कोई भी प्रश्न अगर उठता है, माना हमने बाबा को यथार्थ पहचाना नहीं, ये उसका रिगार्ड नहीं है। और परिवार में भी कई बार हम लोगों के संकल्प उठ जाते हैं, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों हो गया, ये तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, अनन्य था, फिर इसने ऐसा क्यों कर लिया, क्वेश्चन उठ जाते हैं, उसकी कमियां देखने लगते हैं, वर्णन करने लगते हैं, उसके प्रति नफरत की, घृणा की भावनाएं कई बार आ जाती हैं। लेकिन बाबा को हम लोगों ने क्या देखा, बाबा ने हम सब के अंदर विशेषताएं देखी और उसी दीति से बाबा ने हम सबको सम्मान दिया। क्या है, कैसा है, भविष्य जानते हुए भी बाबा वर्तमान में अपने बच्चों को फुल रिगार्ड दिया। मैंने तो साकार के बाद अव्यक्त रूप में जो पार्ट चला है बाबा का, मैं कभी कभी कहता हूँ कि मुझे ड्रामानुसार इतना अच्छा भाग्य मिला जो 76 से लेकर के अभी तक बाबा का कोई भी क्षण हमने मिस नहीं किया। कोई भी क्षण, माना कोई शब्द मेरी उंगलियों के आगे से न क्रॉस हुए हों, ऐसा नहीं हुआ। तो सब लिखा है, सब देखा है बाबा को, जानते भी थे। ये जो बच्चा बाबा के सामने गया, पहले पर्सनल बाबा मिलते थे एक एक से, उसका इतिहास मुझे पता है। और ये भी समझ रहे हैं कि पता नहीं चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, हमको मालूम है। लेकिन बाबा के सामने जाता है, बाबा उसको कितना प्यार करता है, कितना अच्छी भाषणा देता है, कितना शिक्षाएं देता है, वो उसको उठा देता है, चढ़ा देता है। वो भी जानता है कि कल चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, उस विशेषता को देख करके बाबा उसको बचाने के लिए, उसके कल्याण के लिए उसकी महिमा करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसको खूब सम्मान देगा, सम्मान देगा। तो बाबा ने ये सब करके दिखाया कि कैसी भी आत्माएं हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं छिपी हुई हैं। और कैसे वो बाबा ने, दादियों ने रिस्पेक्ट दिया है, अभी भी दे रहे हैं। हम दादी को देखते हैं कितना रिस्पेक्ट देती हैं हर एक को। कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करके उनके पास जाता है, बहुत महिमा करेंगी, बहुत प्यार करेंगी, टोली देंगी, स्लोगन देंगी, कोई न कोई सौगात देंगी। मतलब अभी तक भी इतना हम सब पालना ले रहे हैं। तो विशेषताएं ही दिखाई दें और शुभ चिंतक वृत्ति बनी रहे, ये है सबके आपस का, सबके प्रति रिगार्ड। और स्वयं के प्रति बाबा ने क्या कहा, इतने टाइटल्स हैं, इतना सम्मान बाबा ने दिया है, सम्मान दिया है, अगर जरा भी आत्माएं कोई निराश, उदास, पुरुषार्थ में थक करके, कई बार क्या होता है हमें अपनी कमियां जब दिखाई देती हैं, लगता है ये तो बड़ी ऊंची मंजिल है। कई लोग आके कहते हैं, भाई जी बाबा तो ऐसा कहता है, मेरी स्थिति अभी तक नहीं बनी, कब बनेगी, समय बहुत कम है, दिल से कष्ट। और बाबा हमेशा कहते हैं, अपने को रिगार्ड देना माना कभी भी छोटे दिल नहीं करना, दिल से कष्ट नहीं होना, निराश नहीं होना, अपने सम्मान में रहो और बाबा को साथी बना लो, तो अपने को रिगार्ड देना हो गया। तो आज बाबा ने एक ही शब्द को, पूरे ज्ञान को इस एक शब्द में भर दिया। याद किया ना, याद है ना सबको। तो ऐसा हम सभी भी बाबा के साथ साथ इसमें मास्टर बन जाएं। ब्रह्मा बाबा ने हम सबको कितना रिगार्ड दिया है, दादियां कितना रिगार्ड देती हैं। मैं हमेशा देखता था बड़ी दादी को, कि अगर कोई भी किसी की महिमा होती थी, नेचुरल है जब कोई बहनें कोई कोर्स कराती हैं, किसी को ज्ञान देती हैं, तो स्टूडेंट तो उनकी महिमा करेंगे ही ना, कि इसने बहुत अच्छा हमें समझाया, इसने दादी बहुत अच्छे क्लास कराई, बहुत अच्छी तरह से हमको कोर्स कराया, महिमा करेंगी आके। तो दादी को बहुत खुशी होती थी उस बच्ची की, उस बहन की बहुत दादी महिमा सुन करके एकदम गदगद होती थी, वाह चलो कोई तो बाबा के रतन है जो बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। लेकिन आजकल अगर कोई किसी की महिमा किसी के आगे कर दे तो क्या होता है देखना। कई बार इसी में ही बहुत जबरदस्त माया आती है, इसकी महिमा होती है, इसकी कमियों का पता नहीं है क्या, ये करता है ये करती है ऐसी है ऐसी है, ईर्ष्या पैदा हो जाती। तो दादियों ने अपना जो इस यज्ञ को बढ़ाने के लिए, यज्ञ को आगे बढ़ाने में, बड़ों को आगे बढ़ाने में, सबको आगे बढ़ाने में एक रोल निभाया है, उसका मूल आधार रहा, सबको दिल से सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। कोई एक छोटी विशेषता मैं कहता हूं, एक बार बाबा ने एक मुरली चलाई है, शायद आप सबको याद हो, कि अगर किसी के अंदर 36 में एक गुण है, 35 अवगुण है, तो भी वो बाबा को बहुत प्रिय लगता है। और उस एक गुण को अगर बाबा के काम में वो लगा देता है, बाबा उसको यूज कर लेता है, बाबा के काम में अगर वो आ गया, तो उस एक गुण के आधार से जो उसके 35 अवगुण है वो खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे उस पर वो जीत प्राप्त कर लेता है। इसलिए हरेक ये जरूर समझे, निराश और उदास होने की बजाय, क्योंकि संस्कार हैं, पिछले कर्म हैं, कुछ न कुछ हिसाब किताब होगा, लेकिन फिर भी कभी भी निराशा के संकल्प ना आए। हम अपनी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को बाबा के काम में लगा दें, बीज है, विशेषताएं बीज हैं, और इस बीज को अगर हमने बाबा की इस यज्ञ भूमि में, इस धरनी में डाल दिया, तन से मन से धन से दिल से किया, तो उस एक विशेषता से सब विशेषताएं आ जाती हैं, वृक्ष बन जाता है और सब अवगुण अपने आप छिप जाते हैं। इसलिए कोई भी ये नहीं सोचे कि मेरे अंदर क्या है। बाबा ने हर बच्चे को, कई बार कहते हैं बाबा कि मैंने जिन बच्चों पर नजर डाली है वो बहुत विशेष आत्माएं हैं। माला का लास्ट मण का भी 9 लाख के अंदर लास्ट दाना भी मेरा बहुत वैल्यूबल है, जो भगवान को पहचान के बाबा कहा है। तो इतनी वैल्यू बाबा हम सबकी बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं, हम सभी भी आपस में एक दूसरे को दिल से सम्मान दें। सम्मान अगर देने लगेंगे तो क्या होगा, जो आपसी टकराव हैं संस्कारों के, कोई बात में तेरा मेरा है तू मैं है, वो सब समाप्त हो जाएगा, एकदम सबके प्रति प्यार की भावना आ जाएगी। तो आज की इस मुरली को विशेष अंडरलाइन करना, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि ऐसी मुरलियों को गांठ बांध लो, बार बार रिवाइज करो, और रिवाइज करके उसका स्वरूप बनना है, मुझे बनना है, दूसरा बने या न बने। तो हम सब बाबा के बच्चे सम्मानदाता बने, तो हर एक अपने रिकॉर्ड को देखना, एक बात का ही चेक करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। वैसे तो रिकॉर्ड में कई प्रकार की बातें आती हैं, अगर किसी भी प्रकार से हमारा रिकॉर्ड कहीं खराब होता है पूरी मार्क्स खत्म हो जाती, पढ़ाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई पढ़ाई पर फुल ध्यान दे रहा है, सेवाएं भी खूब कर रहा है, लेकिन कहीं से जरा भी रिकॉर्ड पर दाग आ गया, दृष्टि वृत्ति स्मृति में, तो उसका सारा रिमार्क्स सारी मेहनत खत्म हो जाती है। इसलिए रिकॉर्ड पर जो ध्यान देते हैं स्टूडेंट भी स्कूल के अंदर पढ़ाई के साथ साथ रिकॉर्ड पर जरूर ध्यान देते। अगर कोई बहुत अच्छी मार्क्स से पास हो लेकिन वहां के प्रिंसिपल के द्वारा या प्रोफेसर्स के द्वारा रिकॉर्ड के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन आ जाए तो उसको एडमिशन नहीं मिलती, जल्दी नहीं मिलती कि भाई इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, बोलचाल का रिकॉर्ड है, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, चोरी करेगा, कोई भी प्रकार का एक भी अवगुण होगा उसका रिकॉर्ड खराब हो जाता है। हम सभी भी देखें कि हमारे चरित्र का रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा है, चरित्र पर बहुत ध्यान बाबा खिंचवाते हैं, उसमें दृष्टिवृत्ति भी आती है, पवित्रता की स्टेज भी आती है, क्रोध की बातें भी आती हैं, लोभ की बातें भी आती हैं, ये सब चरित्र के अंदर आती हैं। तो रिकॉर्ड हमारा अच्छा है अगर, तो हम सब देखें कि हम कहाँ तक अनासक्त वृत्तियों में हैं, कहाँ तक शीतल काया वाले योगी बने हैं, कोई भी उत्तेजनाएं। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी कि अगर एक बार गुस्सा कर लेता है कोई तो 6 मास तक उसके प्रति दृष्टिकोण सबका बदल जाता है, उसी नजर से सब देखने लगते हैं गुस्से वाला है। तो ये भी तो एक हमारा रिकॉर्ड खराब हो गया ना। इसलिए अगर कोई ऐसी आदत हो भी तो चेक करना कि मेरा रिकॉर्ड ठीक है। हमारे बड़ों ने अपना रिकॉर्ड कितना अच्छा बना करके दिखाया। हम अपने दादा विश्व रतन को देखते थे, कितना रिकॉर्ड, एकदम हर बात का रिकॉर्ड था। यहां तक भी वो जो साइन करते थे ना, वंडरफुल, लास्ट दिन जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी कितने सारे चेक ड्राफ्ट पर साइन किए होंगे, जो भी मनी ऑर्डर थे। दादा बैठ जाता था, ले आओ सब साइन करें, और एकदम परफेक्ट साइन, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर दिया, चिड़िया बना दिया, ऐसा साइन नहीं था, पूरा विश्व रतन। और इतना अच्छा साइन था, लास्ट तक भी एक्यूरेट का एक रिकॉर्ड था। और शुरू से लेकर के उनके हर सेवा में मैंने उनका रिकॉर्ड चेक किया, देखा कि दादा ने अपने रिकॉर्ड पर बहुत ध्यान रखा है। कोई हंस के बात कर ले, क्या कहता था, ये भी एक विकार है, क्यों हंस के बात करते हो, क्यों हंसते हो, हंसी मजाक करते हो। बहुत क्लास का आधा घंटा क्लास इस पर करा देता, इतना एक रिकॉर्ड बना के रखा था कि नहीं मुस्कुराओ जरूर लेकिन खिलखिलाओ नहीं। चलते थे तो भी ध्यान खिंचवाता था, ये धरती माँ को तुम इतना चल के क्यों तंग कर रहे हो, फास्ट चलते हो, थर 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 हिलती है जमीन, उसको दर्द होता है, क्यों चलते हो ऐसे, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है। और काम में इतनी एक्यूरेसी थी दादा के, जो ये जब हम लोग शुरू शुरू में आए तो दादा हमको रोटी बनाना सिखाता था। उस समय लकड़ियों की चूल्हे होते थे, कोयले पर सेकते थे लकड़ियों पर, चूल्हा तवा इतना बड़ा था, 8-10 रोटी उस पर डाल देते थे एक तवे पर, और तवे से जब सिगरी पर जाती थी तो कई बार जल्दी जल्दी में कच्ची रह गई, पक्की रह गई, तो दादा उठा करके ले आता था, जो कच्ची पक्की रोटी होती थी बनाने वालों को बुलाता था, इतना प्यार से आओ इधर, कहता था देखो ये जल गई रोटी तो खाएंगे नहीं लोग, फेंक देंगे, और ये कच्ची रह गई मान लो कोई ने समझा यज्ञ की चीज है, खा लो, खा लिया उसने, उसके पेट में दर्द पड़ गया, उसको दवाई लेनी पड़ी, बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा, फेंक दिया तो नुकसान, खा लिया तो नुकसान, करेगा क्या, और बनाने वाले पर बोझ चढ़ा, जिसने बनाया उसने समझा हमने सेवा की, ये सेवा है क्या, नहीं करना तो नहीं करो, करना है तो बहुत एक्यूरेट करो। लेकिन इतना प्यार से समझाता था कि कोई भी उसकी बात को सुन करके झुंझलाएगा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ देगा, बहुत प्यार से ऐसा है, ऐसा करो, ऐसा करो, और करके सिखाया, ऐसे भी नहीं कह के सिखाया। पानी गर्म करता था सुबह सुबह बॉयलर में, हम लोग उन्हीं से सीखे बॉयलर में पानी गर्म करना, कोयले के वो होते थे गोले, और दादा लकड़ी पर डाल करके, लकड़ी जला करके उसके ऊपर गोले रखवाता था, इस पर रखो ये गोले जो कोयले के बनाए ना, कोयला और गोबर से गोला बनाते थे, ये कोयले की जो आग है ना ये बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत लकड़ी नहीं लगती, खर्चा नहीं होता, एक बार जला दो रात भर गर्म रहेगा। बहुत प्यार से कम खर्च में इकोनॉमी का अवतार, तो इकोनॉमी का भी रिकॉर्ड, एक्यूरेसी का रिकॉर्ड, चरित्र का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड, सबको सम्मान दे करके समान भाव का रिकॉर्ड, समान भाव का सबके प्रति, ऐसा ये छोटा है ये नया है ये पुराना है ये बड़ा है, नहीं सबके प्रति समान भाव, ये भी एक रिकॉर्ड था। तो ये सब अगर रिकॉर्ड पर हम सब ध्यान दें तो तो हम बहुत आगे से आगे इस चढ़ती कला का जो आज बाबा ने कहा आधार है ये सब, तो हम सब अपना रिकॉर्ड चेक करें। और दूसरा समय अनुसार हर एक चार्ट याद का तो चेक करता ही है, करते हैं ना सभी याद का चार्ट चेक। चार्ट है योग का, योग में मन बुद्धि कितना समय एकाग्र रहती है, अगर यथार्थ याद है तो उसकी निशानियां तो जरूर दिखाई देंगी। अपने आप नेचुरल संस्कारों में परिवर्तन होगा, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, उत्तेजनाएं नहीं होंगी, कोई विकर्म नहीं होंगे। यथार्थ याद की कई निशानियां होती हैं, उन निशानियों के आधार से अपने चार्ट को चेक करो। अगर सचमुच मेरा योग ठीक है, बाबा के साथ है, तो वो शक्तियां अपने आप काम करनी चाहिए। भले हम सिद्धि मांगते नहीं है, सिद्धि की चाहना भी नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में हमारे कर्मों में वो शीतलता, वो मधुरता, वो दिव्यता झलकने लगेगी अगर योग ठीक है तो। किसके साथ योग है? और कोई भी बात अगर कमजोरी की नीचे ऊपर की आएगी भी, तो टच होगा, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है। अब बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर हो जो बाबा की टचिंग को हम सब कैच कर सके। टच तो बाबा सब बच्चों को करता है। समय अनुसार बाबा कहता है मैं हूं ही किसके लिए, बच्चों के लिए हूं ना। हर बच्चे को बाबा अपने, जिस बच्चे ने बाबा को बाबा कहा है, बाबा टच करता है उसको हर बात में, लेकिन वो कैच कितना कर पाता है? कैच करना उसके ऊपर है, और कैच वही करता है जिसकी बुद्धि इंगेज नहीं है, कहीं भी क्लीन है। तो बाबा की टचिंग को कैच करना कि बाबा की क्या हमारे प्रति प्रेरणाएं हैं, क्या बाबा हमसे चाहता है, किस प्रकार की सेवाएं चाहता है, इसके लिए बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखने की जरूरत है। बातें होंगी, संगठन है, बातें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन बुद्धि मेरी जरा भी हलचल में ना आए, सब अच्छा है। ड्रामा में हर बात अच्छा है, हर बात अच्छी है, इसलिए हम क्यों हलचल में आए? जो होगा बाबा जाने, बाबा का यज्ञ है, बाबा बैठा है। हम अपनी बुद्धि को ज्यादा उसमें इंगेज करके, तीरे मेरे में जा करके ऐसा न बना लें जो बाबा की टचिंग आए और हम कैच न कर पाए। इसलिए हम सब ध्यान रखें कि बुद्धि बहुत स्वच्छ क्लीन हो, बाबा की टचिंग को कैच करो। कई कहते हैं बाबा की टचिंग है, कैसे पता चले? मेरी मनमत भी हो सकती है, लेकिन अगर टचिंग है तो उसमें उलझन नहीं होगी। अगर टचिंग है बाबा की, तो आपको मुरली में भी वो बात निकल के मिलेगी, वरदान में, स्लोगन में, कहीं भी, या आप जिनसे संपर्क संबंध में आएंगे उनके द्वारा भी वो शब्द सुनने को मिल जाएंगे। क्योंकि बाबा कोई डायरेक्ट टचिंग अगर कर भी रहा है, तो इनडायरेक्ट अपने बच्चों के थ्रू भी ऐसी प्रेरणाएं दे देता है। कई बार जो टचिंग बाबा के कमरे में आई, हम मुरली सुनने आते हैं, मुरली में वही बात आ जाती है, बाबा से मिलने आते हैं वही बात आ जाती, माना बाबा जो मुझे कह रहा है, टचिंग दे रहा है, वो सामने मुरली में भी है, बड़ों के द्वारा भी हमको बात मिल रही है। तो ऐसी बात को ही टचिंग कहेंगे, बाकी नहीं तो अगर अपनी मनमत के आधार से टचिंग है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर मनमत है, उलझन है, प्रश्न है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो सफलता नहीं मिली। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कहीं भी मनमत और परमत का बुद्धि पर प्रभाव न पड़े। श्रीमत तो बाबा की स्पष्ट मुरली के अंदर मिल रही है, श्रीमत पर हम ध्यान दें तो बाबा की हर मुरली में, हम साकार मुरलियों को पढ़ो अच्छी तरह से, सब प्रकार की श्रीमत है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, हम इतना बिजी रहते हैं, हमारे पास ये काम है, ये काम है, मुझे पता ही नहीं इसके लिए श्रीमत क्या है। लेकिन बाबा ने एक एक बच्चे को, चाहे वो प्रवृत्ति वाला है, चाहे कुमार कुमारी है, चाहे समर्पित है, चाहे सेंटर पर है, चाहे मधुबन में है, सबके लिए श्रीमत दी। और हम सब श्रीमत पर अगर चलते चलते हैं तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहता है। इसलिए याद का चार्ट और जो भी हमारे खर्चे हैं, संकल्पों के हैं, बोल के हैं, एनर्जी जो हमारी खर्च हो रही है, उसका पोता मेल। इसलिए बाबा कहता है तीन शब्द याद रखो। रिकॉर्ड के लिए एक शब्द है एक नामी। अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड उसका बनेगा जो एक नामी, एक बाबा, दूसरा न कोई। उसका रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा। और इकोनॉमी का संकल्प अगर है तो उसका पोता मेल अच्छा हो जाएगा कि हमें कोई भी खर्चे व्यर्थ नहीं करने हैं, स्थूल में भी नहीं और सूक्ष्म में भी हमारी शक्तियां ऐसे खर्च न हो जाएं जो हमें दूसरों से मांगनी पड़े कि मेरे पास नहीं है। इसलिए कोई भी शक्ति को जाने न दो व्यर्थ, कहीं से भी लीकेज न हो। जहां खर्चे हो रहे हैं वहां इकोनॉमी करो, क्यों खर्चे हो रहे हैं, बोल करके मैं क्यों खर्चा कर रहा हूं, संकल्प करके क्यों कर रहा हूं। अगर इकोनॉमी इस बात की भी करते हैं स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति की, तो हमारे जैसा धनवान कोई नहीं। बाबा ने बहुत कुछ दिया है और उसके आधार से हम सब अपने पोता मेल को चेक करें। कमाई कम है खर्चे ज्यादा हैं तो क्या होगा, दिवाला निकल जाएगा फिर। इसलिए कहते हैं जितनी चादर उतने पैर पसारो, कमाई जितनी कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे ना हो। माना अगर हम ज्ञान और योग अच्छी तरह से कमा रहे हैं, अच्छी तरह से हमारी सेवाएं चल रही हैं, तो हमारे पास है धन संपत्ति, उसको हम सफल करें, व्यर्थ ना करें। तो इकोनॉमी से अपना पोता मेल चेक करना है, इकोनॉमी से अपना रिकॉर्ड चेक करना है, और एकाग्रता की आधार से अपने चार्ट को चेक करना। एकाग्रता चार्ट के अंदर हमारी कितनी बढ़ती जा रही है योग के चार्ट में। अगर हम बैठते हैं और बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक घंटा दो घंटा बीत जाता है तो हाजिरी तो नहीं होती। भले वो एक रिमार्क होती है, प्रेजेंट मार्क होती हैं, लेकिन कई बार हम यहाँ बैठे भी बाहर होते हैं। ये ध्यान रखना है कि बाबा के ऊपर के चार्ट में, ऊपर के पोता मेल में मेरा ये रिकॉर्ड तो नहीं है कि बाहर है अंदर नहीं है। तो यहाँ बैठे भी कई बार बुद्धि बाहर भटकती रहती है, उसको एकाग्र करें तो एकाग्र हो जाएगी, तो अपने आप योग सहज हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से अपने चार्ट को मेंटेन कर सके कितना है क्या है। कई बार बाबा कहता है मेरे बच्चे कोई कोई एक घंटा भी मुझे याद नहीं करते, कल परसों में मुरली में था, एक घंटा भी याद नहीं करते। याद नहीं करते हैं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, याद नहीं करते तो संस्कार कैसे चेंज होंगे। तो अगर हमारे अंदर लगन है कि मुझे अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, सजाओं से मुक्त होना है, तो उसके लिए याद की अग्नि को प्रज्वलित करना है। लगन की अग्नि है और कुछ नहीं है, जितना प्यार है उतना योग है। तो सहज योगी जीवन है, बहुत बाबा के प्यार में लौलीन स्थिति में रह करके एकाग्रता को बढ़ाते चले, अपनी एकाग्रता को डिस्टर्ब होने न दें, बातें कुछ भी हों। इसलिए मन और बुद्धि स्थिर और एकाग्र रहे तो योग सहज लग जाएगा, और बाबा की बातों को, ज्ञान के मनन को, चिंतन को, रूह रिहान को हम जितना बढ़ाते हैं उतना हमारा योग सहज हो जाता है। निरंतर एक रस बीज रूप की स्टेज नहीं बनेगी, निरंतर सूक्ष्म वतन की स्टेज भी नहीं रह सकती है, लेकिन निरंतर योगी जीवन बन सकती है। उसके लिए बाबा की ज्ञान की मुरली से कोई ना कोई अच्छी बात लेके, सम्मान लेकर के, वरदान लेकर के, जैसे आज बाबा ने वरदान क्या दिया, अरे जो नाम रूप से न्यारा जिसको कहा उसके कितने नाम की पूजा हो रही है। तुम बच्चे नाम के भुखारे क्यों हो, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे, मेरा मान न हो, मेरे मान नाम हो, तुम इसका त्याग करो तो देखो ये भाग्य पीछे पीछे आएगा। कच्चा फल नहीं खाओ, महिमा हो जाए मेरी, मेरा नाम हो जाए, मेरा मान हो जाए, मुझे लोग जाने, मेरा फोटो छप जाए मुझे। बाबा कहता है तुम इसका त्याग करके देखो, उसके पीछे पीछे भाग्य आ जाएगा। इसलिए सेवाओं की फील्ड के अंदर जो विघ्न आते हैं वो नाम मान शान के ज्यादा आते हैं। अगर उसका हम सब त्याग कर दें कि भले इसका नाम तो बाबा का नाम, इसका नाम तो बाबा का नाम, मेरा भी हो जाएगा उसके पीछे, मुझे क्या चाहिए। अगर ये त्याग वृत्ति अंदर से आ जाएगी तो सब प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम सबको ये त्याग वृत्ति से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा की सेवाएं हैं, बाबा ने मुझे निमित्त रखा है, इसलिए मेरा नाम हुआ तो ठीक है, इसका नाम हुआ तो ठीक है। इसका क्यों हो गया, इसने कुछ नहीं किया, मैंने इतना किया, मेरे कोई जानता ही नहीं, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मतभेद हो गया, मनमुटाव हो गया। कहते हैं मतभेद तो कम होते हैं लेकिन मनभेद बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए मतें तो मिल सकती हैं लेकिन मन में भेद ना आए, मन भेद हो गया तो कब मिलेंगे आपस में। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि नाम मान शान के कारण मन भेद न हो जाए, और उस पर अगर अंडरलाइन कर लिया तो हमारा संगठन बड़ा अच्छा, बाबा ने इतना सुंदर परिवार बनाया है, इतना चुन चुन करके निकाला है, हम सब ऐसे प्रिय आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड रखें, जो बाबा खुश हो जाए कि ये सब बच्चे एक हो गए तो अब तो बाबा प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। हमारी एकता, हमारा स्नेह, हमारा संगठन बाबा को प्रत्यक्ष कर देगा। तो अब समय अनुसार एकानामी, एक नामी और एकाग्रता, तो एकता आ जाएगी। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।